पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
आज भी श्रोताओं के कमेंट्स, ईमेल्स और दूसरी कुछ चीज़ें कार्यक्रम पत्र संसार की शोभा बढ़ाएंगे। देखते ये हैं कि दीदी आमतौर पर ईमेल से शुरू करती हैं, तो आज किसका ईमेल शामिल कर रही हैं
जी? सबसे पहले भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी को पहले नए साल की मुबारकबाद देते हैं। हालांकि एक हफ्ता गुजर गया है, फिर भी हमारे पास इतने ईमेल आए हैं, सभी वो नए साल पर ही है। तो डॉक्टर हेमंत कुमार ने गोराडी भागलपुर बिहार से हमें हैप्पी न्यू ईयर कहा है 2022 का। और फिर जमशेदपुर झारखंड से एसपी शर्मा लिखते हैं कि रेडियो तेरान हिंदी सेवा टीम के सदस्यों, श्रोताओं और दुनिया भर के हितधारकों के सभी मित्रों और परिवारों को एक बहुत खुश, स्वस्थ और समृद्ध नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, विशेष रूप से विश्व शांतिपूर्ण और युद्ध, भूख और कोरोना वायरस से मुक्त हो, सारा विश्व सुखी और सुरक्षित हो।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो साल गुजर गया 2021 और उससे पहले वाला साल भी, इस पर कोरोना की छाया रही। कोरोना ने सारी दुनिया को, पूरे संसार को परेशान करके रख दिया। पूरे विश्व की गतिविधियां हर क्षेत्र में बहुत बुरी तरह प्रभावित रहीं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे रहे कि जो ऐसा कहना चाहिए कि एक तरह से ध्वस्त होकर रह गए। तो अब नए साल में आशा की जाती है कि दुनिया को इस तरह के संकटों से, इस तरह की परेशानियों से, महामारियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दीदी, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है और एक जाहिर है महामारी है, लेकिन बहुत सारे संकट और बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो इंसान की अपनी पैदा की हुई हैं। कोरोना के बारे में तो एक अलग डिबेट है कि इंसान ने बनाया या खुद से आया, एक अलग चीज़। लेकिन कुछ चीज़ें जो निश्चित रूप से मालूम है कि इंसान के हाथ की है, कम से कम वहाँ पे कोशिश की जा सकती है कि ये समस्याएं ख़त्म हों और इस तरह के तनाव और विवाद ना रहे। नए साल में हम इसकी कामना करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में WHO का जो एक कुछ दिन पहले का बयान है, उसमें ये बात कही गई है कि आशा है कि नए साल में इसकी संभावना है कि ये खत्म हो जाएगा।
किसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल लिखते हैं कि 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि नववर्ष में रेडियो तेरान श्रोताओं के लिए कोई नई योजना सामने लेकर आएगा। बहरहाल, हमने हर बार की तरह दिनांक 17 दिसंबर का पत्र संसार का अंक भी पूरे मनयोग से सुना, जिसमें श्रोता मित्रों की प्रतिक्रियाओं के बीच सांस्कृतिक खबर में ईरानी उत्तरी शहर तैलिश एवं पोलो खेल के इतिहास पर अच्छी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बहन शहनाज हसन की बातचीत का दूसरा भाग भी सुना, जिसे सुनकर चित्त प्रसन्न हो गया। धन्यवाद एक अच्छी प्रस्तुति के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस ईमेल के लिए और आपके इन विचारों के लिए। हमारे लिए भी ये खुशी की बात है कि आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं, और महत्वपूर्ण है कि आप ओडिशा से हमें अपने विचार भेजते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ ही साथ आभार। श्रोताओ, अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की, तो देखते हैं कि दीदी ने इस सप्ताह के लिए क्या खबर चुनी है।
जी, ईरान के दक्षिण में आबादान शहर में स्थित रंगूनिया मस्जिद पूरी तरह एक अलग वास्तुकला है और ईरान की ये सबसे अमूल्य मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद शियाओं और सुन्नियों के बीच दोस्ती का प्रतीक है। प्रत्येक ऐतिहासिक युग में ईरान में मस्जिदों का निर्माण इन चार स्थापत्य शैलियों में से एक में किया गया था, खुरासानी, राजी, आज़री और इस्फ़ानी। हालांकि ईरानी मस्जिदों में हर युग के दौरान उनके रूपों में समानताएं पाई जाती हैं। रंगूनिया मस्जिद अन्य मस्जिदों से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। मस्जिद का निर्माण 1912 में भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। मस्जिद 1920 में बनकर तैयार हुई थी। मस्जिद का निर्माण भारतीय और बांग्लादेशी कर्मियों और श्रमिकों के लिए किया गया था, जो दक्षिणी ईरान में रिफाइनरियों में काम करने के लिए ईरान आए थे। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को हरे रंग से रंगा गया है और बाहरी हिस्से को सीमेंट और उभरा हुआ सजावट से सजाया गया है। मस्जिद की वेदी संरचना के खूबसूरत हिस्सों में से एक है और इसे अरबी और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। नवीनीकरण होने के पश्चात रंगूनिया मस्जिद को 2009 में एक हस्तलिखित और ऐतिहासिक स्मारक संग्रहालय के रूप में फिर से खोल दिया गया। मस्जिद के हिस्से में काजार और पहलवी युग की पुरानी किताबें और पंडुलिपियां प्रदर्शित की गई हैं। इनमें वित्तीय और व्यावसायिक पत्रों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वचन पत्र और विनिमय यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज शामिल हैं।
तो दीदी ने बहुत अच्छी खबर सुनाई संस्कृति से जुड़ी रंगूनिया मस्जिद के बारे में। अब बारी है श्रोताओं कमेंट्स की, तो देखते हैं कि दीदी ने कौन से कमेंट्स चुने हैं।
जी, केवल ईरान तक सीमित नहीं है शहीद सुलेमानी के चाहने वाले। इस पर परी जाफरी लिखती हैं, जनरल सुलेमानी एक आदर्श और विचारों के संपूर्ण स्कूल थे, जहां उनकी विरासत हर स्वतंत्रता चाहने वाले इंसान के डीएनए के साथ जुड़ गया है। इसके अलावा सार्वजनिक और निजी स्कूलों में उनका विषय पढ़ाया जाना चाहिए। वो किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिखाने आए थे जिसे आप एक आदर्श मुसलमान कह सकते हैं।
बहुत मूल्यवान विचार व्यक्त किए हैं परी जाफरी ने, और वास्तव में ऐसा ही है। शहीद कासिम सुलेमानी एक व्यक्ति के बजाय एक पाठशाला, एक विचारधारा और एक मत थे, जो कि अनेक शिक्षाओं, खसूसियतों, विशेषताओं और तरह तरह की सीख का एक संग्रह है। उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को अगर देखा जाए तो उन सब में कोई ना कोई सीख है, कोई ना कोई आदर्श है और कोई ना कोई बात सिखाई गई है। तो ये बात सही है। और इस तरह से चूंकि उनका जो ये व्यक्तित्व है और उसके जो अलग अलग पहलू हैं और खूबसूरती का जो पहलू है, उनके स्वभाव के खूबसूरती का पहलू, साथ ही साथ उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो सूझबूझ है, उनकी जो दूरदर्शिता है, इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ हैं जो उनके व्यक्तित्व में भरी हुई हैं। कुछ सामने आई हैं और कुछ शायद आने वाले दिनों में पता चलें, जब उन घटनाओं के बारे में पता चले जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ईरान के क्रूज मिसाइलों ने शक्ति के संतुलन को परिवर्तित कर दिया, द न्यू यॉर्कर। इस पर शहनशाह लिखते हैं कि अमेरिका पहले ही 80 के दशक में सद्दाम के माध्यम से ईरान पर हमला कर चुका है और अमरीका 80 के दशक में ईरान से अपना आक्रामक युद्ध हार गया। और 80 के दशक में ईरान की सेना बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आज बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अगर अमेरिका इतना मूर्ख है कि ईरान पर फिर से हमला कर सकता है, तो वो इस बार अपनी कब्र और इसराइल की कब्र खोदेगा।
इस्लामिक गणतंत्र ईरान की ताकत की जहां तक बात कही है वो बिल्कुल सही है। ईरान ने रक्षा क्षेत्र में, साथ ही साथ दूसरे क्षेत्रों में बहुत व्यापक और उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका एहसास इस्लामी गणतंत्र ईरान के दोस्तों को भी है, वो इस पे खुश हैं, और दुश्मनों को भी अच्छी तरह से पता है, इसीलिए वो चिंतित रहते हैं, हताश रहते हैं।
भैया, अब हमारे एक अच्छे श्रोता के विचार जानने की बारी आई है।
जी,
तो आज हम शहीद सुलेमानी के बारे में, हमारे एक अच्छे श्रोता ने पंजाब पाकिस्तान से अपने
अपने
विचार
विचार
प्रस्तुत किए
भेजें। जी
जी।
बिल्कुल,
ये
शहीद सुलेमानी की बरसी चुके दीदी अभी गुजरी है, और इस संदर्भ में हमारे कई कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसके इन कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक भी हमें मिलती रही, बल्कि ये कह सकते हैं एक तरह से उसी फीडबैक की एक कड़ी ये भी है जो हमें पाकिस्तान से, हमें ये विचार भेजे गए
जी
हैं। शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम कई प्रसारित किए गए, तकरीबन 6-7 कार्यक्रम थे जिनमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बात की गई। तो आइए देखते हैं कि हमारे श्रोता ने क्या
मलिक
विचार।
जलाल अब्बास, देखते हैं ये क्या कहते हैं।
जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मलिक जरार अब्बास है, मैं पंजाब चकवाल पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। शहीद कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, शहीद कासिम सुलेमानी की ज़ाती खसूसियात के हवाले से बात की जाए तो जैसा हमने पढ़ा, उनके बारे में सुना, और जैसे बहरहाल वो नज़र आते हैं, उनकी शख्सियत, वो एक बहुत ही मोमिन, दीनदार, निडर, शुजा, बहादुर जर्नेल थे इस्लाम के, और मिल्लत इस्लामिया पर उनके बहुत बड़े एहसानात हैं जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। एक तो उनकी ज़ात का शख्सी पहलू था कि वो एक बहादुर, मोमिन, शुजा और नेक इंसान थे, मुजाहिद इंसान थे, बहादुर इंसान थे। और दूसरा उनकी ज़ात का जो दूसरा पहलू था, मैं ये समझता हूँ कि जनरल कासिम सुलेमानी न फ़कत मुसलमानों के मोहसिन हैं या एक ख़ास फ़िरके के, सेक्ट के मोहसिन हैं, बल्कि वो बशरियत के मोहसिन हैं, वो इंसानियत के मोहसिन हैं। शहीद कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत की खिदमत की है। दहशतगर्दी ये पूरी इंसानियत का अलमिया है, दहशतगर्द पूरी इंसानियत का दुश्मन होता है, टेररिस्ट पूरी इंसानियत का जो है वो दुश्मन दुश्मन होता है। दाइश जैसे जो शफाक दरिंदे हैं जिनकी पुश्त पर एक पूरी इस्तेमारी ताकतें खड़ी हुई थी, और इन दरिंदों के सामने मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कोई भी उनके नज़दीक जो है वो इंसानियत का एहतराम नहीं था और ना है। आज भी ये जितने भी टेररिस्ट ग्रोह हैं, दाइश की सूरत में, अलकायदा, तालिबान, इनके सामने, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि शहीद कासिम सुलेमानी जो थे रिजवानुल्लाह ताला अलैह, वो इंसानियत के जो हैं वो क्या कहते हैं कि मोहसिन थे, वो बशरियत के मोहसिन थे, और आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में, तारीख में ये चीज़ जो है वो दुनिया देखेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहीद कासिम सुलेमानी ने जो जिहाद किया, जो काम किया, वो पूरी इंसानियत की खिदमत थी, वो पूरी बशरियत की खिदमत थी। जिस जिस इलाकों में दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये टेररिज्म फैल रही थी, सीरिया, इराक, यमन या दूसरे जगहों पे, उन्होंने मुसलमानों को न फ़कत ये कि प्रोटेक्शन या उनका दिफा किया, डिफेंस किया, बल्कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स जो थे, यानी एक तरह से ये पूरी इंसानियत की खिदमत थी। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो शहीद इस्लाम हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो खिदमत की है मुसलमानों की, इस्लाम की और बशरियत की।
तो दीदी, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अगली मुलाकात तक हम अनुमति लेना चाहेंगे। श्रोताओं, अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा
खुदा
हाफिज़।
हाफिज़।